नमस्कार भारत, 5 मार्च दिन शनिवार, मैं हूं संदीप सोनी। मोदी सरकार को घेरने वाले कन्हैया कुमार पर विपक्षी दलों की पैनी नजर।
हम लोग तो लगातार कहते थे कि इन पर देशद्रोह का मुकदमा कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रमाण क्या?
बंगाल के अंदर जितने भी लेफ्ट के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वो सब भाग लेंगे, कन्हैया सहित।
निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया। भाजपा और कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी है चुनौती?
इसमें बीजेपी का पॉलिटिकल कैपिटल उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन कांग्रेस यदि ये चुनाव हार जाती है तो।
असम में राहुल गांधी की चुनावी रैली और आज पदयात्रा। होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। देशद्रोह के मामले में जमानत पर रिहा हुए और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेने वाले जेएनयू छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार को विपक्षी दलों ने हाथों हाथ लिया है। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने उन्हें पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में शामिल होने की पेशकश की है, लेकिन कन्हैया कुमार का कहना है कि उन्हें अभी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुइस इन्यासियो लुला डी सिल्वा ने कथित धोखाधड़ी के एक मामले में उनसे की गई पूछताछ की निंदा की है। पुलिस की हिरासत में 3 घंटे बिताकर निकले लुला ने कहा कि उन्हें एक कैदी की तरह महसूस हुआ और इस दिन गणतंत्र का अपमान हुआ है। उधर मौजूदा राष्ट्रपति जिल्मा रुसेफ जांच के लिए पुलिस के लुला को ले जाने के फैसले से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये गैर जरूरी था क्योंकि उन्होंने जाँच में पहले भी मदद की है। हालांकि उन्होंने कहा कि जाँच जारी रहनी चाहिए। ये मामला सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास में वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़ा हुआ है। सीरियाई विपक्ष के एक मुख्य नेता रियाद हिजब ने आरोप लगाया है कि रूसी सेनाओं ने करीब 1 सप्ताह पहले सीरिया में लागू हुए युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। शुक्रवार को सीरिया के पूर्वी इलाके दमिश्क में हवाई हमलों की खबरें आई थीं। हाई नेगोशिएशन कमेटी के रियाद हिजब ने पेरिस में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, पिछले 7 दिनों से जब से संघर्ष विराम लागू किया गया है, शासक दल और उनके सहयोगी दल, खासकर रूसी वायुसेना और शासन, ईरानियों, उनके लड़ाकों और चरमपंथियों के साथ लोगों को मारने के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें रूसी और सीरिया के हवाई सेना के 90 से अधिक हवाई हमले भी शामिल हैं। उन्होंने मिसाइलों, क्लस्टर बमों, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया है और सीरिया के उन मुक्त इलाकों में 50 से अधिक स्थानों को निशाना बनाया है जहाँ विपक्ष संघर्ष विराम स्वीकार कर चुका है। ये थे हाई नेगोशिएशन कमेटी के रियाद हिजब के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की पुलिस ने देश के सबसे बड़े अखबार जमन के इस्तांबुल स्थित मुख्यालय में घुसने के लिए बिल्डिंग के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। इससे पहले अधिकारियों ने अखबार पर संपादकीय नियंत्रण कर लिया था। अमरीकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने इस नियंत्रण को देश में बिगड़ती न्यायिक और कानून व्यवस्था की श्रृंखला में मीडिया के खिलाफ तुर्की सरकार का ताजा कदम बताया है। अखबार के संपादक अब्दुल अहमद बिलीसी ने इसे देश और गणतंत्र के लिए काला समय कहा है। इस घटना को अमेरिका स्थित इस्लामी मौलवी फैटुल्लाह गुलेन के समर्थकों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। शोधकर्ताओं के अनुसार जीका वायरस शिशुओं में विकसित होते मस्तिष्क में एक खास तरह की कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम हो सकता है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ, अपने रेडियो पर, bbchindi.com पर और मोबाइल फोन पर भी लाइव। अगले आधे घंटे में आप सुनेंगे 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, कल बॉक्स ऑफिस पर कौन कौन सी फिल्में रिलीज हुई हैं, कैसी हैं ये फिल्में, खेल की खबरें और दिल्ली से छपे अखबारों की आज सुर्खियां क्या हैं, इलाहाबाद में अफगानिस्तान के छात्र और स्थानीय छात्रों के बीच झड़प की घटना क्यों और कैसे हुई, पुलिस ने इस मामले में अब तक क्या कुछ किया, साथ ही जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार से 2 टूक बातचीत भी। लेकिन पहले शुरुआत कार्यक्रम की एक सियासी खबर से। सीधे मोदी सरकार पर निशाना साधकर सुर्खियों में आए कन्हैया कुमार को विपक्षी दल अब पलकों पर बिठा रहे हैं। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कह दिया है कि कन्हैया कुमार पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि विपक्षी दलों को कन्हैया में मोदी सरकार विरोधी चमकता चेहरा नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
उनको एहसास कराना है कि आप देश की सरकार हैं, देश के प्रधानमंत्री, देश के शिक्षा मंत्री हैं, और आपके दायित्व किसी ऑफिस से नहीं, संविधान और संसद से तय होगा।
केंद्र सरकार पर सीधा और तीखा हमला। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार कल मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए। इसके पहले गुरुवार को अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद भी कन्हैया ने नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला किया था। जेएनयू कैंपस में दिए उस भाषण की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर तारीफ की थी। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनके भाषण को जमकर सराहा।
हम लोग तो लगातार कहते थे कि इन पर देशद्रोह का मुकदमा कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रमाण क्या है? और जो कुछ भी कन्हैया जी ने कहा है वो बिल्कुल सही है, दुरुस्त है।
वामपंथी दलों को भी कन्हैया कुमार में एक उम्मीद दिखाई दे रही है। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी का कहना है कि कन्हैया कुमार पश्चिम बंगाल के चुनाव में सक्रिय भागीदारी करेंगे।
बंगाल के अंदर जितने भी लेफ्ट के सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो सब भाग लेंगे, कन्हैया सहित।
हालांकि कन्हैया कुमार अब तक राजनीति का रुख करने से इनकार करते रहे हैं
कि मैं नेता नहीं हूं, मैं विद्यार्थी हूं। और हमारे कैंपस के जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने अपना प्रतिनिधि मुझे चुना है। सवाल पूछना काम है, आगे जाकर के टीचर बनना है।
हालांकि जेल से बाहर आने के बाद कन्हैया जिस तरह से केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे उनकी राजनीतिक समझ को लेकर संकेत मिलते हैं। कन्हैया ने कल अफजल गुरु को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा,
अफजल गुरु आइकन नहीं है मेरे लिए, आइकन आज के समय में रोहित बेमुला है।
शायद ये संकेत ही हैं जिन्हें लेकर विपक्षी दल कन्हैया में एक संभावना देख रहे हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कन्हैया को केंद्र सरकार के खिलाफ चेहरे के तौर पर पेश किए जाने की संभावना को देखते हुए ही विपक्ष उनसे उम्मीद लगाए हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर कहते हैं,
केंद्र सरकार के खिलाफ कन्हैया कुमार को पेश करने की जो संभावनाएं दिखाई पड़ रही विपक्ष को, ये अंततः तो फैसला करना होगा कन्हैया को। कन्हैया तो वामपंथी दलों में थोड़ा सा सवाल भी उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो पोलिट ब्यूरो में कोई भी दलित या पिछड़ा नहीं है, इस तरीके की जो सवाल उठा रहे हैं तो वो तो उनको असहज करते हैं। लेकिन चूंकि केंद्र सरकार के खिलाफ वो एक चेहरा बना जा सकते हैं, तो उन्हीं संभावनाओं को उनमें तलाशा जा रहा है।
लेकिन क्या केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध उन्हें राजनीति की मुख्यधारा की तरफ ले जाएगा? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में ही मिल सकेगा।
मोदी सरकार विरोधी रुख और तल्ख तेवर कन्हैया कुमार को मुख्यधारा की राजनीति में लाते हैं या नहीं, रिपोर्ट सुना रहे थे वात्सल्य राय। हमारे सहयोगी विनीत खरे ने कन्हैया कुमार से बात की और जानना चाहा कि देशद्रोह के मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, आगे क्या योजना है, चुनावी दंगल में उतरेंगे या नहीं, तेवर बरकरार रहेंगे या ठंडे पड़ जाएंगे।
22 दिन के बाद बाहर आए हैं, मुझे अनुमान नहीं था जेल के अंदर कि बाहर इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ चल रहा है। तो मैं चीज़ों को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, जो चीज़ें हैं जिसको मैंने एक कैदी के बतौर, एक एक्यूज के बतौर, उसमें भी जिसके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा दिया गया हो, उसको जो मैंने झेला है, उसको मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जो मेरा अनुभव है उसको टूटे फूटे शब्दों में आर्टिकुलेट करके मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक तो कतई नहीं है।
हम देख रहे हैं कि आप बोलते वक्त अब थोड़ा संभल के बोल रहे हैं।
नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा क्या है ना कि कंटेंट और फॉर्म जो है ना, उसमें फ़र्क आ जा रहा है। और आज के समय में परिस्थिति यही है कि जो माहौल बनाया गया है पूरे देश में, वहाँ पे सधी हुई बात की जाए, क्योंकि बहुत सारे भ्रम फैलाए गए हैं।
अभी सोचा नहीं है कि लेकिन कैंपेनिंग करनी है कि नहीं?
अभी तो ये प्रस्ताव ही मेरे पास नहीं पहुंचा है, तो फिर इस पे निर्णय मैं कैसे बताऊँ।
मेरी एक दो बीजेपी नेताओं से बात हुई है और उनका कहना है कि जुडिशरी को इसका नोट लेना चाहिए, जो कल आपका भाषण था, क्योंकि आपको इंटरिम बेल मिली है, उसकी कंडीशंस हैं।
जुडिशियरी को क्या करना है, पुलिस को क्या करना है, सरकार को क्या करना है, विपक्ष को क्या करना है, ये नागपुर से नहीं तय होना चाहिए। मैंने कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ा है और न्यायिक प्रक्रिया में हमको पूरा भरोसा है। और मेरा ख्याल है कि जो बीजेपी के लीडर इस पे कमेंट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा केयरफुली मैंने उस कोर्ट ऑर्डर को पढ़ा है, क्योंकि वो मेरे लिए है। मुझे न्याय का मानना का पूरा ख्याल है, उसके दायरे में हूँ। अगर मैं उसके दायरे में नहीं हूँ, वो कोर्ट डिसाइड करेगी, बीजेपी के नेता कोर्ट नहीं।
कन्हैया, अब
कैसे मतलब एबीवीपी से और आपके बीच में पुराने रहे हैं, दूरियां रही हैं, लेकिन ये पूरे मूवमेंट के बाद खाइयां कुछ ज्यादा चौड़ी नहीं होगी? अल्टीमेटली आप स्टूडेंट बॉडी हैं दोनों, कैसे फिर साथ में ही काम करना है?
आप लोगों को एक जानकारी होगी कि एबीवीपी के ऑफिस बेयरर ने इस्तीफा दे दिया, तो एबीवीपी के लोगों को हम नफरत की नज़र से नहीं देखते। जो लोग एबीवीपी में अभी जुड़े हैं, बहुत सारे लोग इसलिए जुड़ गए हैं क्योंकि उनकी सरकार बनी है, कि कुछ लोग गले का नस तान कर नारा लगा रहे हैं, खून से तिलक करेंगे, गोलियों से आरती, क्योंकि डीओ में भर्ती आने वाला है। तो मुझे उन लोगों से कोई नफरत नहीं है, कभी कभी जो है उनकी भविष्य की चिंता भी होती है कि कुछ लोग नौकरी पा जाएंगे, बाकी लोगों का क्या होगा।
कन्हैया कुमार से बात कर रहे थे विनीत खरे।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया है। ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। पश्चिम बंगाल में 6 और असम में 2 चरणों में चुनाव होंगे, बाकी राज्यों में एक ही चरण में 16 मई को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 19 मई को होगी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में एक ओर जहां मोदी सरकार की साख दांव पर लगी होगी, वहीं कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, अन्ना द्रमुक जैसी पार्टियां भी अपनी जमीन मजबूत करने की हर संभव कोशिश करेंगी। इन राज्यों में किस तरह के समीकरण उभरेंगे, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, कितनी कमजोर है, और ख़ास तौर पर भाजपा और कांग्रेस के लिए ये चुनाव कितनी बड़ी चुनौती है, इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने वरिष्ठ पत्रकार अदिति फर्निस से बात की।
इसमें बीजेपी का पॉलिटिकल कैपिटल उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन कांग्रेस यदि ये चुनाव हार जाती है तो असम और केरल दोनों जगह से उसकी 2 सरकारें बर्खास्त हो जाएंगी। 7 राज्यों में अभी कांग्रेस की सरकार है, कुछ दिन पहले अरुणाचल से सरकार निकल चुकी है, और यदि 2 और चली जाती हैं तो और भी कम हो जाएंगे। तो कांग्रेस के लिए मेरे ख्याल से इसमें खतरा ज्यादा है। दक्षिण में केरल, पांडिचेरी और तमिलनाडु में चुनाव हो रहे हैं, यहाँ की भाजपा का कुछ खास है नहीं। तमिलनाडु में संगठन भाजपा का बहुत ही कमजोर है। केरल में भाजपा बढ़ रही है, लेकिन उस तरह से नहीं जितना की उसको उम्मीद थी। लेकिन यदि हम पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो असम में और बंगाल में इधर हाल में ही भाजपा बुरी तरह से मुंह की खा चुकी है। पंचायत चुनाव में कुछ हाथ नहीं लगा, असेंबली के चुनाव में थोड़ा बहुत है लेकिन वो भी न के बराबर है, लेकिन थोड़ा बहुत आधार असम में बनाया है, और ये देखना है कि असम में क्या होता है, क्योंकि भाजपा यदि चुनाव जीत जाती है तो कम से कम ये कह पाएगी कि ऐसा राज्य जहां हम लोगों का कुछ भी नहीं था वहाँ अब हम सत्ता में।
तमिलनाडु के जो 2 क्षेत्रीय दल हैं, जयललिता की पार्टी है और करुणा निधि की पार्टी है, उनकी आप क्या संभावनाएं देख रही हैं?
डीएमके और कांग्रेस के बीच में समझौता हो चुका है, लेकिन यदि डीएमडीके विजयकांत जैसा कि वो जाने जाते हैं, यदि वो अलायंस में नहीं आते हैं तो फिर ये अलायंस उतना संगठित नहीं होगा जितना हो सकता था। जयललिता की हमेशा यही उम्मीद रहेगी कि ऑपोजिशन बुरी तरह से छिन्न भिन्न हो, लेकिन असम में हाँ कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों से लड़ रही है। वहाँ अहोम गण परिषद और बोडो पीपल्स पार्टी ने अभी इधर हाल में ही बीजेपी के साथ समझौता किया है, तो ये देखना है कि वहाँ क्या होता है।
तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है पश्चिम बंगाल का चुनाव?
2 तरह की चुनौतियाँ हैं। एक तो हमें मालूम है कि कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों में बातचीत चल रही है किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग की। वामपंथी दलों का वोट शेयर बंगाल में बहुत अच्छा है, लेकिन पिछले 5 सालों में 13 MLA क्रॉस करके, मतलब उन्होंने इस्तीफा दिया है अपनी पार्टी से और तृणमूल में शामिल हो गए हैं। 13 बहुत बड़ा नंबर है। कुल मिला के वहाँ पर तृणमूल का वर्चस्व मेरे ख्याल से को कोई चुनौती नहीं है, लेकिन यदि कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं, और कांग्रेस के बहुत लोग कह रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो फिर हो सकता है स्थिति में थोड़ा सा बदलाव आए।
अलग अलग राज्यों में अलग अलग समीकरण। ये थी वरिष्ठ पत्रकार अदिति फर्निस। और अब बात भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम की, जहां कांग्रेस वर्ष 2001 से सत्ता पर आसीन है, और इस किले को बचाने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों असम का दौरा कर रहे हैं, जहां कल उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और आज पदयात्रा करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के इस दौरे को ज्यादा अहमियत नहीं दे रही, वहीं राजनीतिक पंडित भी मान रहे हैं कि असम में इस बार कांग्रेस की राह आसान नहीं होगी। गुवाहाटी से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को असम के सिलचर और नौगांव की दो अलग अलग जनसभाओं में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया। साथ ही राहुल ने असम में शांति और विकास के लिए कांग्रेस को फिर से वोट देने की अपील की। महज 15 दिन के भीतर राहुल गांधी दूसरी बार असम दौरे पर आए हैं। असल में भाजपा का क्षेत्रीय दल असम गण परिषद के साथ हुए गठबंधन के बाद कांग्रेस उन वोट बैंकों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है जिसकी बदौलत वह असम जैसे राज्य में लगातार 3 बार शासन में आ चुकी है। मंगलावासी बहुल बरागवेली के इस क्षेत्र में विधानसभा की 15 सीटों पर कांग्रेस नजर गड़ाए हुए है और राहुल गांधी की जनसभा पार्टी की इसी रणनीति का हिस्सा था। वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहां 13 सीटों पर जीत मिली थी। सिलचर के एसएम देव स्टेडियम में राहुल गांधी ने कहा,
मोदी जी ने 1 घंटे के भाषण में उन्होंने मेरे ऊपर पर्सनल आक्रमण किया, मुझे अपने इंदिरा गांधी जी के कोर्ट सुनाए, राजीव गांधी जी के कोर्ट सुनाए, मगर मेरे सवालों का एक जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैंने उनसे 4 सवाल पूछे थे, मैं उनसे फिर पूछ रहा, मेरे ऊपर जितना आप आक्रमण करना चाहते हो, जितना आप पर्सनल अटैक करना चाहते हो मेरे ऊपर करो, मजे लो, मगर मेरे जो 4 सवाल है उनका आप जवाब मुझे दे दो।
असम में 4 अप्रैल से 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव घोषणा करते हुए चुनाव आयोग ने यहां आचार संहिता लागू कर दी है। हालांकि इस घोषणा के महज कुछ मिनट पहले सिलचर में अपना भाषण देते हुए मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने बरागवेली क्षेत्र के विकास के लिए 3,000 करोड़ के विशेष पैकेज देने की घोषणा की। बराक का अगर विकास नहीं होगा तो असम का कैसे विकास होगा? मैं चाहता हूं बराक का विकास हो। इस क्षेत्र में समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, संपर्क व्यवस्था की समस्या है, लेकिन कांग्रेस इन समस्याओं पर ध्यान देती रही है। आप हमको वोट दें, मैं आपको विशेष पैकेज दूंगा। ये थे असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के शब्द। असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के साथ गठबंधन कर चुनावी तैयारियों में जुटी भाजपा राहुल गांधी की जनसभाओं को इतनी अहमियत देते नहीं दिख रही। असम दौरे पर आए राहुल गांधी और अकेले चुनाव लड़ने का दम भर रही कांग्रेस के बारे में वरिष्ठ पत्रकार बैकुंठनाथ गोस्वामी कहते हैं,
पहला बात ये है, ये राहुल गांधी जी को कोई करिश्मा भी नहीं है और कोई क्राउड पुलर भी नहीं है। किसी ने सिखा दिया, लिख दिया कि आसाम में ऐसा ऐसा बोलो, वो आके बोलेगा, अंदर से बोला है ऐसा कभी नहीं रहे।
कांग्रेस अपने स्टार प्रचारक राहुल गांधी को उन्हीं इलाकों का दौरा करा रही है जहां उसकी जीत की संभावनाएं ज्यादा है। पिछले जनसभा में राहुल गांधी ने चाय बागान में काम करने वाले समुदाय को संबोधित किया था जो राज्य में कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक रहा है। राहुल गांधी शनिवार को नौगांव में एक विशाल पदयात्रा करेंगे जिसे कांग्रेस अपनी ताकत बता रही है। दिलीप कुमार शर्मा, BBC गुवाहाटी।
पूर्वोत्तर राज्य असम के बाद चलते हैं संगम नगरी इलाहाबाद, जहां एक कॉलेज में अफगानिस्तान से पढ़ने आए छात्र समूह और स्थानीय छात्रों के बीच हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं अब इस मामले को राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश हो रही है। समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
इलाहाबाद के नैनी स्थित शियार्ट्स विश्वविद्यालय में बीटेक के कुछ छात्रों के बीच JNU परिसर में चल रही गतिविधियों पर हुई बहस पहले मारपीट और FIR तक पहुंची और अब इसे राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रद्रोह का मुद्दा बनाकर राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है। छात्रों का एक गुट स्थानीय छात्रों का है तो दूसरा अफगानी छात्रों का, जो अफगानिस्तान से यहाँ पढ़ने आए हैं। दोनों गुटों के बीच 2 दिन पहले जमकर मारपीट हुई और अब पुलिस मारपीट में शामिल छात्रों की तलाश कर रही है। 18 अफगानी छात्रों के अलावा 15 भारतीय छात्रों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। दरअसल दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के विरोध में शियार्ट्स विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले कुछ भारतीय छात्रों ने एकता मार्च निकाला था। इस मार्च की वीडियो क्लिपिंग बनाकर सोशल साइट्स पर डाली गई थी जिस पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां आई थी। छात्रों का आरोप है कि ये टिप्पणियां अफगानी छात्रों ने की थी। कॉलेज के एक छात्र शिवाजी पांडे ने BBC को बताया,
जो आप एक शांति मार्च निकाले थे, मैं शांति मार्च का ये JNU प्रकरण में कूड़ निकाले थे हम लोग अपना अपने तरफ से कि JNU जो हो रही घटना उसी दिन उस पर निकाले थे, तो कुछ उसकी वीडियोग्राफी हुई थी तो उसको व्हाट्सएप पर डाला गया था, तो उसी को कुछ लड़के थे जो बाहरी लड़के हैं अफगानिस्तान साइड के जो यहाँ पर रहते हैं वही कुछ टिप्पणी की है। उसके बाद कुछ उस समय भी कुछ प्रतिनिधि किए थे, फिर उसी पे कुछ विवाद हुआ।
वही विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि ये मामला इसलिए इतना तूल पकड़ गया क्योंकि स्थानीय छात्रों को कुछ राजनीतिक संगठनों ने भड़काया है। विश्वविद्यालय के प्रो VC डीसी एसबी लाल कहते हैं।
अफगानी स्टूडेंट्स ने जैसा कि हम लोगों को नॉलेज में आया कि इन लोगों को जिले लड़ने ये लोग गए हिंदी स्पीकिंग वाले अफगानियों के पास, तो वो जो थे दो चार उनके साथ बाकियों को पता चला तो वो भी आ गए, तो दोनों में झगड़ा हुआ, तो जो ज्यादा थोड़ा मार खाई है वो हिंदी स्पीकिंग वालों को लगी। फिर इन्होंने जो हिंदी स्पीकिंग वालों ने ये पूरा ग्रुप बन गया, बहुत बड़ा मॉब हो गया इनका। तो इनसे जब बात भी कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन तो बात करने को तैयार नहीं थे, इनके पीछे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट भी लगे हुए थे इनको भड़काने के लिए।
स्थानीय छात्रों के पक्ष में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और कुछ अन्य संगठन भी आ गए हैं। इन छात्रों का ये भी आरोप है कि विश्वविद्यालय पहले भी कई गलत वजहों से चर्चा में रहा है। एबीवीपी से जुड़े छात्र नेता राणा यशवंत कहते हैं,
उन छात्रों पे जो छात्र पीटे गए मारे गए उन पे जो है इस आधार पे जो है मुकदमा दर्ज करा दिया कि उन छात्रों ने भारत का पक्ष क्यों लिया, हिंदुस्तान का पक्ष क्यों लिया, वो धार्मिक उन्माद कर रहे थे। वहाँ पे इसके पहले भी धर्मांतरण जैसे घृत कार्य होते रहे, वहाँ पे फर्जी डिग्रियां बांटी जाती थी।
वहीं भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय सांसद केशव मौर्य ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए इसकी तुलना जेएनयू प्रकरण से की है। केशव मौर्य ने इसे संसद में उठाने की बात भी कही है। बहरहाल पुलिस दोषी छात्रों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
रिपोर्ट सुना रहे थे समीर आत्मज मिश्र।
क्या परंपराओं और रूढ़ियों को तोड़ने से मजबूत होंगी महिलाएं? भारत जैसे परंपरागत समाज में क्या महिलाएं आजादी महसूस करती हैं? विश्व महिला दिवस से पहले इन्हीं सवालों पर चर्चा होगी इंडिया बोल में। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 5 मार्च शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1-800-11-7000 और 1-800-102-7001 पर।
आज है शनिवार तारीख 5 मार्च। बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। वक्त हुआ है 6:52 और आइए अब जानते हैं आज दिल्ली से छपने वाले अखबार क्या कुछ कह रहे हैं। मानसी दास,
दिल्ली से छपने वाले लगभग सभी अखबारों में कन्हैया कुमार और पश्चिम बंगाल और अन्य 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा सुर्खियों में है। हिंदी भाषा के अखबार को देखें तो अमर उजाला, हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने कन्हैया के बयान को छापा है, जिसमें वे कहते हैं कि मेरा आदर्श अफजल गुरु नहीं है, रोहित वेमुला है। उधर भास्कर में नोएडा से गायब हुई फैशन डिजाइनर शिप्रा मलिक के घर लौटने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी गई है। लिखा है कि वे घरेलू झगड़े से परेशान होकर घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन 3 दिन बाद बेटे की फोटो देखकर घर लौट आई हैं। नवभारत टाइम्स ने आगामी विधानसभा चुनावों की खबर को असेंबली लीग स्टार्ट के नाम से छापा है और लिखा है कि भाजपा के सामने 2014 की लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन दोहराने का दबाव होगा। एक और खबर की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगी। अखबार के एक कोने में यह खबर छपी है कि अभिनेता मनोज कुमार, जिन्हें आप और हम भरत कुमार के नाम से भी जानते हैं, उन्हें प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। अब अंग्रेजी के अखबारों पर एक नजर डालते हैं। पायोनियर में खबर छपी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 50,800 करोड़ के सेतु भारतम परियोजना की शुरुआत की है और कहा है कि देश में आने वाले दिनों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस परियोजना के अंतर्गत साल 2019 तक रेलवे क्रॉसिंग होती हैं उनको उनपे बिना फाटक वाली रेलवे क्रॉसिंग बनाने की कोशिश की जाएगी। दी हिंदू में एक और खबर है जिसमें कहा गया है कि मीडिया संस्थान IIMC में एसोसिएट प्रोफेसर अमित सेनगुप्ता ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने दलित छात्र रोहित वेमुला, IIT में छात्रों के आंदोलन और हाल में JNU के छात्रों के प्रति समर्थन जताया था, जिसके कारण उनका तबादला कर दिया गया था।
बहुत शुक्रिया। और अब बात उन खबरों की जिन पर आज रहेगी हमारी नजर।
आज से मथुरा में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है। आंध्र प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र भी आज से ही शुरू हो रहा है। मशहूर गजल गायक गुलाम अली की फिल्म घर वापसी का आज दिल्ली में म्यूजिक लॉन्च होगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में चेन्नई की एक अदालत में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीलंका के पूर्व मंत्री डगलस देवानंद की पेशी होगी। वे 3 दशक पुराने हत्या के एक मामले में अभियुक्त हैं। खेलों की बात करें तो प्रो कबड्डी लीग में आज फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे, जहां यू मुंबा और पटना पायरेट्स की टीमें आमने सामने होंगी।
इस हफ्ते कौन सी फिल्में रिलीज हुई हैं और कैसी हैं ये फिल्में बता रहे हैं फिल्म समीक्षक अर्णब बनर्जी। उनसे बात कर रही हैं इंदु पांडे।
ये दोनों फिल्में बिल्कुल अलग किस्म की हैं। जुबान मोजेस सिंह की फिल्म है जिसमें एक लड़के की कहानी है। विकी कौशल एक छोटे से सरदार बने हैं जिनके पिताजी शब्द कीर्तन करते हैं गुरुद्वारे में, और किसी कारणवश उनके पिताजी की आवाज़ चली जाती है जिससे उनको विकी के मन में एक भय बैठ जाता है संगीत के प्रति, लेकिन वो कुछ बनना चाहता है। सब उसको दबाते हैं क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसको कोई सहारा नहीं मिलता। एक दिन वो बिल्डिंग के नीचे कहीं खेल रहा होता है और एक इंसान उसको मदद करता है, कहता है कि खुद अपनी मदद किया करो और तुम आगे बढ़ोगे। ऐसे ही उसकी बात वो याद रखता है और किसी भी तरह से वो बड़ा बनना चाहता है। वो इंसान है मनीष चौधरी। मनीष चौधरी आगे जाके बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं और विकी हमेशा उनसे मिलने की चाह रखते हैं, यानी वो उसको याद रखते हैं, उसकी बात को याद रखते हैं और एक दिन जाके वहाँ उससे मिल भी लेते हैं किसी तरह। जो इंटरेस्टिंग बात है, बच्चा ये अपनी जो जुबान खो बैठता है, यानी पिताजी के मौत के बाद उसको सहारा नहीं होता और वो गाना भी छोड़ देता है, इस तलाश में रहता है कि कोई उसकी जुबान बने, यानी कोई उसको सहायता करे, कोई मदद करे। किस तरह से वो अपनी खोज में निकल पड़ता है और किस तरह से वो अपने आप को पहचानता है, जुबान उसकी कहानी है। मुझे लगता है कि लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगी कि एग्जैक्टली जुबान किसकी है और क्या कहना चाहती है।
तो जुबान को कितने नंबर देते हैं आप?
मैं जुबान को 5 में से 2 दूंगा।
अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जिसमें हीरो कौन है, फिल्म का डायरेक्टर, राइटर या फिर फिल्म की हीरोइन।
जय गंगाजल एक अलग किस्म की, अगेन एक नई किस्म की कहानी है जहाँ पे उस तरह का एक ट्रेडिशनल हीरो कोई नहीं है। यानी आभा माथुर जो प्रियंका चोपड़ा प्ले कर रही हैं, एक पहली आईपीएस ऑफिसर हैं, यानी एसपी बन के आती हैं बांकेपुर मध्य प्रदेश में। वहां पे जो पुलिस इंडस्ट्रियलिस्ट और गुंडों का जो नेक्सस है उसको तोड़ने में वो कामयाब होती हैं, लेकिन इसके दौरान उनको कितनी कठिनाइयां आती हैं ये फिल्म गंगाजल में दिखाया गया है। प्रकाश झा यहाँ पे एक बहुत अनोखा रोल कर रहे हैं, यानी वो भी पुलिस ऑफिसर हैं और करप्ट हैं। उनकी वजह से कई मिनिस्टर्स हैं उनको शय मिलती है और वो करप्शन में उनका सहयोग देते हैं। मुझे लगता है जय गंगाजल एक अच्छी फिल्म है, लेकिन जहां पर भी आपको मालूम है बुरे लोगों के प्रति जो लड़ाई है, अच्छे लोग लड़ते हैं, वहां पे अच्छे की जीत होनी ही चाहिए। यहां पे प्रियंका चोपड़ा एक बहुत स्मार्ट यंग पुलिस ऑफिसर दिखाई है, उन्होंने अपने रोल को बहुत बखूबी निभाया है। साथ साथ प्रकाश झा जिन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं, उन्होंने नब्ज पकड़ी है ऑडियंस की क्योंकि कुछ रियल मुद्दों के साथ ये फिल्म बनाई है। उससे भी ज्यादा जरूरी है ये बताना कि प्रकाश झा एज एन एक्टर बहुत इम्प्रेसिव रहे हैं। मैं जय गंगाजल को 5 में से 3.5 दूंगा।
फिल्म समीक्षा के बाद अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। बांग्लादेश में खेले जा रहे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कल पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से मात दी। पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 151 रनों का लक्ष्य था जो उसने उमर अकमल के 48 और सरफराज अहमद के 38 तथा शर्जील खान के 31 रनों की मदद से 19.2 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस मैच का इस टूर्नामेंट पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि भारत और बांग्लादेश पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं जो कल खेला जाएगा। लगातार 4 मैच जीतकर फाइनल में पहुंचे भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खुश हैं कि उनके सभी खिलाड़ी फिट हैं।
आने वाले मैचेस में क्या होगा वी डोंट नो। जो स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज होती है उस सारी इंजरीज को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में सोचना बेकार है, बट अदर देन दैट अभी सारे फिट हैं, दे आर लुकिंग गुड।
उधर थाईलैंड में जारी ISSF विश्व कप में भारत के निशानेबाज जीतू राय ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। जीतू राय ने 191.3 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता जबकि पूर्व ओलंपिक चैंपियन चीन के पिंग वेई 186.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वहीं जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु महिला एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में 4थी वरीयता हासिल चीन की सिजियान वांग से 21-16, 21-18 से हारकर बाहर हो गई।
कार्यक्रम के समापन से पहले विश्व समाचार एक बार फिर मानसी दास से।
बीबीसी समाचार। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने जेएनयू छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार को पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में शामिल होने की पेशकश की है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुइस इन्यासू लुला डी सिल्वा ने कथित धोखाधड़ी के मामले में उनसे की गई पूछताछ की निंदा की है। सीरियाई विपक्ष के एक मुख्य नेता रियाद हिजब ने आरोप लगाया है कि रूसी सेनाओं ने करीब 1 सप्ताह पहले सीरिया में लागू हुए युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। तुर्की पुलिस ने देश के सबसे बड़े अखबार जमन के इस्तांबुल स्थित मुख्यालय में घुसने के लिए बिल्डिंग के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में इतना ही। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे थे हेमंत कुशवाहा। ठीक एक घंटे के बाद विश्व भारती में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए अनुमति।